ओम शांति। लौकिक में हमारा जन्म स्थान हिमाचल से है, डिस्ट्रिक्ट सोलन। सोलन के साथ सोलन शिमला आपने नाम सुना होगा, तो सोलन के साथ एक धर्मपुर स्टेशन आता है, कसौली धर्मपुर। तो धर्मपुर में हमारा जन्म स्थान है लौकिक। लौकिक जन्म हमारा 1980 26 जनवरी 1980 को हुआ था। तो बचपन हमारा हिमाचल में बीता। तो जैसे हम थोड़े बड़े हुए तो मैं समझती हूँ शायद मैं तीसरी या चौथी क्लास में होंगे, तो एक घर पर एक फोटो बेचने वाला एक व्यक्ति आया, तो उसमें श्री कृष्ण की एक फोटो थे। तो जब मैंने उस फोटो को देखा तो मुझे मन में हुआ कि मुझे इस फोटो को लेना है, आकर्षण हुआ मेरा। लेकिन अगर लिया, अगर मैं माता जी को कहूं कि मुझे फोटो लेनी है तो फिर वो मुझे डांटेंगे। तो मैंने चुपके से गुल्लक से पैसे निकाले और वो फोटो खरीद ली। और उस फोटो को मैं बार बार देखती थी, कृष्ण को देखकर मन में एक आकर्षण होता था, उसको मैं देखती रहती थी और फिर कपड़े में छिपाकर अलमारी में रख देती थी। फिर मैं खेलने में मस्त हो जाते थे हम लोग। फिर थोड़े समय के बाद बार बार मैं उस फोटो को देखा करती थी जब छोटी थी। तो हाँ जी, अभी तो सारा पता चल गया। तो उसके बाद फिर हाँ जी, फिर धीरे धीरे बार बार मैं उसको देखती थी कि कितना इसमें दिव्यता। उस टाइम तो बुद्धि में सब नहीं होता था, पर एक आकर्षण होता था उसको देखकर। फिर जब और थोड़ी बड़ी हुई तो कमरे में एक देवी की फोटो, बहुत सुंदर वो देवी थी, बहुत बड़ी, तो वो फोटो लगाई। तो जब मैं उस फोटो को देखती थी तो देखती रह जाती थी और घंटों घंटों में उस फोटो को निहारा करती थी कि ये फोटो में ये देवी कितनी सुंदर है, इनके परिधान, इनके हर चीज, ये कहाँ रहते होंगे। और उस फोटो में सारा दृश्य स्वर्ग का था। तो उस दृश्य को देख के मेरे मन में आकर्षण होता था कि ये कहाँ रहती है। मैं भी, जैसा मेरा दिल करता था कि मैं भी इसके अंदर ही चली जाऊं, इस देवी के साथ ही मैं भी रहूं। तो फिर मैं माता जी से पूछा करती कि ये कहाँ रहते हैं ये देवी देवताएं। तो वो कहते थे कि देवी देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तो मैंने कहा स्वर्ग कहाँ होता है, तो कहते वो आसमान के ऊपर स्वर्ग होता है। अच्छा, तो मैं आंगन में बाहर जाती थी और ऊपर देखना शुरू कर देती थी आसमान में, कि आसमान में स्वर्ग है। तो उस पता नहीं प्रकाश में कैसे वो स्वर्ग होगा, वहां वो देवी देवताएं रहते हैं। तो मन करता था कि मैं भी ऊपर उनके पास चली जाऊं। तो इस प्रकार बचपन से मन में एक, वो भी हमारे मन में धारणा बैठा रखी थी कि इंसान मरने के बाद पशु योनि में जाता है। तो जब हम बच्चे छोटे थे, हम शरारत करते थे या खाना फेंक देते थे, तो हमारे माता जी कहते थे कि अगर तुमने खाना फेंका तो धर्मराज में आपको, मतलब ऐसे कहते, आंखों से खाना उठाना पड़ेगा या नमक उठाना पड़ेगा ये सब। और धर्मराज का एक बहुत डरावना सा पोस्टर था घर पर उस टाइम पर। तो उसको देखकर बहुत डर लगता था कि कड़ाई के अंदर ये सब क्या है धर्मराज, कि ऐसा हमें सजा भोगनी पड़ेगी अगर हम कहीं शरारत करेंगे या शोर करेंगे। तो ऐसा हमें डरा के रखा था। तो मन में एक भय था कि हमें पशु योनि में जाना है अगले जन्म में। तो मैं कहा गंदे पशु तो हम नहीं बनेंगे, बच्चे थे तो ऐसी बात करते थे कि हमें अच्छे सुंदर पशु बनेंगे हम। तो शेर नहीं, पैरट बनेंगे, मोर बनेंगे, हम ऐसी बातें छोटे बच्चे आपस में करते थे। तो मैं उस टाइम पे शायद 11 साल की थी या 12 साल की, जब हमारे लौकिक चाचा जी को ज्ञान मिला। सोलन में एग्जीबिशन में उन्होंने एग्जीबिशन देखी, तो एग्जीबिशन के बाद उन्होंने कोर्स किया, कोर्स के बाद उनको निश्चय हो गया। तो उसके एक साल के बाद घर पर गीता पाठशाला खोल दी और गीता पाठशाला में सारे एग्जीबिशन के चित्र लगा दिए। तो वो हमें ज्ञान सुनाते थे कि इंसान जो है वो मरने के बाद इंसान ही बनता है। तो जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई, शायद मैं 7th क्लास में थी, तो इतना अच्छा लगा कि अच्छा शुक्र है भगवान, हम पशु नहीं बनेंगे, हम इंसान ही बनेंगे। तो फिर शिव बाबा की उन्होंने पहचान दी कि ये भगवान है, तो ठीक है वो भी पता चल गया सारा। तो मन में एक इच्छा होती थी व्रत रखने की, शिव की पूजा करने की, लेकिन मैं कहती थी कि मैंने रखना है तो माता जी मुझे व्रत रखने नहीं देती थी। वो बचपन वो तो हाँ, उसके बाद जब एक दो साल हो गए ना फिर मैंने उसको, पिताजी व्रत रखते थे तो सारी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, फिर मैंने उस फोटो को उस सामने रख दिया, फिर कृष्ण से हटकर मेरा मन देवी की ओर चला गया फिर देवी तो वो सब मन में ख्यालात होते थे कि देवी देवताएं कौन है, क्या है, कितने अच्छे, एक अट्रैक्शन होता था उनको देख के कि बस मैं उनके पास चली जाऊं जैसे। तो फिर उसके बाद ये सब ज्ञान मिला, बताया कि भगवान है और पुनर्जन्म के बारे में पता चला, ड्रामा हो बहु रिपीट होता है, छोटे छोटे थे भी ठीक है समझ में आया सारा, और फिर देवी देवताओं का तो इतना नॉलेज नहीं थे। तो फिर हम छोटे थे उस वक्त ही धारणाएं हो गई, लहसुन प्याज सारा बंद हो गया घर पर, और हमारे लौकिक माता जी पिताजी क्लास में जाने लगे, पहले माता जी, पिताजी को बाद में निश्चय हुआ। और धीरे धीरे हम भी कभी कभी जाते थे सेंटर पे, ऋषि भाई मेरे से 2.5 साल छोटा, तो अगर मैं 12 साल की तो वो मेरे से और 2.5 साल छोटा, तो माता पिता जाते थे, वो हमें ज्ञान सुनाया करते थे। तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि में होता था क्योंकि छोटी बाल बुद्धि थी, तो इतना गहराई में उस टाइम पे जाना नहीं होता था। फिर पढ़ाई भी चलती रही और वो सब ज्ञान में भी चलते रहे, तो और बच्चे सब जाते थे क्लास में पर मैं नहीं जाती थी क्लास में सेंटर पर। तो एक दिन माता जी ने कहा कि आपको चलना है आज, मैंने कहा मैंने नहीं जाना है, कहते नहीं आज आपको चलना पड़ेगा हर हाल में, तो थोड़ा उन्होंने डांटा मुझे। तो जब उस दिन 18 जनवरी था, तो जब मैंने वो कदम बाबा के घर में रखा तो 18 जनवरी इतना शांत वातावरण मुझे लगा, और जैसे ही मैंने रखा कि ये मैं कहाँ आ गई, मैं किस दुनिया में आ गई, एकदम सन्नाटा जैसे चारों ओर, तो शांति मेरे मन को बहुत ज्यादा भाई जैसे। और फिर क्लास हुई, कमेंट्रीज वगैरह हुई, तो जब वो चली तो मुझे ऐसा लगा कि कमेंट्री मैंने पहले कभी सुनी हुई है, अब कब सुनी ये पता नहीं। और फिर लौकिक माता जी ने मेरा हाथ दीदी के हाथ में दिया, ऑफिस में बैठे थे, और कहा कि दीदी लो इसको संभालो, इसको भी ज्ञान दो। तो उस जब मैंने फर्स्ट टाइम दीदी को देखा सफेद साड़ी में, तो उनको देखकर मेरे मन में एकदम संकल्प आया कि अरे कितना सादा जीवन है इनका और कितनी प्योर लाइफ है, कितनी डिविनिटी इनके अंदर है, तो मुझे भी ऐसा जीवन बनाना चाहिए, एक अट्रैक्शन हुई मुझे। और फिर मेरे मन में उस वक्त संकल्प आया कि इतना अच्छा इनका जीवन है और ये ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, तो ऐसा ज्ञान तो कभी माता जी ने भी हमें नहीं सुनाया, स्कूल में टीचर्स से उन्होंने भी हमें ऐसा ज्ञान नहीं सुनाया, तो ये सब अलौकिकता क्या है, कैसी है, तो खिंचाव हुआ मुझे। तो फिर धीरे धीरे मैं सेंटर पे जाने लगी, कोर्स करने लगी। जब 11th-12th क्लास में पढ़ते थे तो सबसे लास्ट में हमारा होता था खड़े होने का, तो जो प्रेयर चलती थी लास्ट में, तो प्रेयर में गाते थे कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो मुझे ऐसा लगता था, लास्ट में होते थे सारे बच्चे, हजार बच्चे हैं स्कूल के अंदर, बॉयज गर्ल्स, तो ऊपर मुझे ऐसा लगता था छत पर जैसे ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि बच्चे मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। तो मुझे लगता रही तो ब्रह्मा बाबा है और बाबा मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। तो मैं कहा बाबा मुझे तो पता चल गया कि आप मेरे माता पिता, और मुझे उस टाइम खुशी होती थी अंदर में। और फिर पर इन सब बच्चों को तो पता ही नहीं कि आप भगवान माता पिता हम सबके हैं। तो मैं कहा ये क्या मुझे ही पता इतने सारे बच्चों में से। तो नशा चढ़ता था कि देखो भगवान की नजर इतने सारे बच्चों में से मेरे ऊपर पड़ी, तो मैं सिलेक्टेड सोल हूँ, भगवान ने मुझे खींचा है अपनी ओर। तो ऐसा अनुभव होता था स्कूल टाइम में। फिर कभी बीच बीच में थर्सडे संडे को सेंटर जाना होता था, और ऋषि भाई भी और बड़े हो गए थे उस टाइम पे, तो ऋषि भाई एक और लौकिक छोटा भाई और एक चाचा जी का बेटा, तो तीन जने मिलकर, तो जितने भी सॉन्ग हिट सॉन्ग होते थे फिल्म के उन दिनों में तो ऋषि भाई का काम था कि उन सब सॉन्ग को बाबा के सॉन्ग में चेंज करना। बहुत ही इंटेलिजेंट बचपन से एकदम हर चीज में, तो और इतना गला, वो कहता था कि मैं मोहम्मद रफी मैं ही हूँ, तो इतने अच्छे गीत एकदम शांत। तो उन्होंने संडे वाले दिन पढ़ाई करनी, क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा है तो इतनी उनकी टफ पढ़ाई होती थी, तो सारी पढ़ाई करने के बाद बीच में रात को कमरा बंद करके छोटे भाई ने केसियो चलाना बजाना और उस चाचा जी के बेटे ने ढोल के और ऋषि भाई तर्ज बाबा का गीत वो तैयार करते थे। जितने भी एवरी संडे और जितने भी कोई फंक्शन त्यौहार होते थे तो हर प्रोग्राम्स में ऋषि भाई और उसकी पार्टी वो पार्टिसिपेट करते थे, और इतना अच्छा गीत है मोहम्मद रफी गा रहे हैं और सारे लोग जैसे सुन हो जाते थे सुनते हुए भी। तो जितने भी सॉन्ग्स, इतने सारे क्या सॉन्ग क्या पोएम्स, हर चीज में वो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो पर मैं कम जाती थी, वो लोग जाता जाते थे तो फिर मुझे दीदी कहते थे, मेरा लौकिक नाम अनुपमा, तो मुझे कहते थे कि अनु आप सेंटर पे क्यों नहीं आते, आप भी आया करो ना। मैं कहा दीदी पढ़ाई होती है ना, फिर उसमें बिजी रहते हैं अब, तो कभी कभी मैं जाती थी। तो एक दिन उन्होंने फोर्सफुली कहा कि देखो अनु कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं फोर्सफुली, और वो तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं और वो आकर जाने भी वाला है, और अब बस थोड़ा सा समय रह गया विनाश होने का, अगर तुमने अपना भाग्य अभी नहीं बनाया तो फिर कब बनाओगे। माना ये फोर्सफुली ये बात ऐसी की कि विनाश होने वाला है, बस ये तीर, ये बात ना तीर की तरह अंदर चली गई कि विनाश होने वाला है और मैं तो रह जाऊंगी, भगवान आकर जाने भी वाला है, बस अब मैं, मेरा भाग्य रह जाएगा। और फिर ये संकल्प आया और मैं घर गई, कहते देख लो अब भाग्य बनाना है तो क्या। अच्छा, तो फिर संकल्प किया कि नहीं अब तो मुझे अपना भाग्य बनाना। और लौकिक माता जी जो हमारे हैं उनको जब ज्ञान मिला तो एकदम समझ आ गई, वैसे वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन शिव बाबा का ज्ञान मिला तो विश्वास हो गया, तो उनको प्योर लाइफ बहुत अच्छी लगी और उनके मन में थॉट था कि मैंने अपनी बच्ची को इस लाइन में चलाना है। तो वो मुझे घर में माताजी पिताजी कहते थे कि देखो ये लाइन बहुत अच्छी है आपको जाना चाहिए, पर मुझे खुद भी वो फील हो बात सारी। तो फिर कहते शादी वादी ये सब लाइन अच्छी नहीं होती है, ठीक है विषय विकारों की दुनिया क्योंकि दुनिया हमें दुनिया का कुछ भी अनुभव नहीं थे, दुख दर्द क्या होता है, रिश्ते नाते कहीं हमारा आना जाना नहीं होता था। हमारे लौकिक माताजी पिताजी बस अपने मस्त वो गवर्नमेंट जॉब में बाहर रहते थे, तो इतना बस अंदर ही अंदर हमारी एक लाइफ थी। क्या दुनिया के अनुभव होते, एकदम इनोसेंट, कुछ भी पता नहीं था जीवन लाइफ क्या है। तो फिर वो कहते थे कि अच्छा, तो फिर जब मैंने खुद इस बात को फील किया कि नहीं ये लाइफ अच्छी है, तो मुझे प्योरिटी की ओर अट्रैक्शन हुई, सादा जीवन मुझे जीना है, ये अच्छा लगा। तो फिर मैंने संकल्प किया कि हाँ, अब मुझे एक खींच होती थी, बाबा जैसे मुझे खींच रहा है कि बच्ची बस अब आपको आना है और बाबा की सेवा करनी है। तो फिर बस अपना सामान पैक किया और माता जी पिताजी को कहा कि मैं जा रही हूं। तो ठीक है, फिर उन्होंने सह छुट्टी दे दी और हम सेंटर पे आ गए। लगभग वो समय शायद 99 ऐसा, तो मैं सेंटर पे आ गई और सेंटर पे रहना शुरू कर दिया। बहुत छोटे से बाबा ने बहुत उड़ना प्यार, इतना स्नेह कि दुनिया का कुछ पता ही नहीं, इतना बाबा ने ऐसे ऐसे प्यार स्नेह में उड़ाना शुरू कर दिया। और दीदी थे, ज्योति दीदी, वो हमें कहते थे कि बाबा के साथ सरो संबंध का अनुभव करना है, तो कैसे अनुभव करना वो हमें सिखाते थे। तो मुझे कमेंट्री से, मैं कहती दीदी मुझे योग कराओ, इंटरेस्ट था योग के लिए, तो बहुत दीदी जैसे कमेंट्री से ऊपर ले जाते थे बाबा के पास, बाबा के साथ अनुभव करना सरो संबंधों का। तो फिर वो जो दीदी ने उस टाइम पे हमें अनुभव कराए, बाबा के कमरे में बैठकर आपने आज भाई के संबंध का अनुभव करना है, आज आपको माता के संबंध का, तो उस पर लिखना है आपको, तो वो हम सबकी शुरू में अच्छी रिहर्सल हो गई। तो फिर वो संकल्प आता था लौकिक भाई का, फिर वो चेंज होके बाबा की ओर बुद्धि जाती थी। माँ के रूप में माँ का संकल्प आता था, तो फिर माँ से भी ज्यादा उस ब्रह्मा माँ ने हमें कितनी पालना दी, तो वो सारा चेंज होने लगा। लौकिक से कट ऑफ हो गए एकदम, और बाबा के साथ सारे रिश्ते जोड़े, और फिर ये लाइन हमारी आगे बढ़ी। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए, सेंटर्स संभालने शुरू किए वहां पे, तो इतना सेंटर्स का कारोबार होता है कि अपने लिए टाइम ही नहीं वहां पर, दीदी इतने बिजी हैं वहां पर, सेवाएं इतनी ज्यादा है कि सुबह से लेकर रात तक अपने लिए कोई टाइम नहीं। और इतना सारा फिर संकल्प आता था कि बाबा सेवाएं भी करनी है, सारे सेंटर भी संभालने अच्छे से, माँ बन के उनकी पालना भी करनी, पर अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता था। तो फिर संकल्प आता था कि मुझे बेहद की सेवा में जाना है, और मुझे ऐसे कोई बड़े मिले जो जिनका एक ज्ञान योग की तरफ एक ध्यान हो, और हमारा भी ध्यान उसकी ओर खिंचवाए। तो फिर मैं उस टाइम छोटी थी, तो मैंने जगदीश भाई जी की क्लास सुन रही थी मैं सेंटर पर। तो जगदीश भाई जी ने उस टाइम पे सोनीपत का नाम लिया, तो मुझे तो पता नहीं था कि सोनीपत कहाँ है, क्या है। तो जैसे वो शब्द मैंने सुना, तो शब्द को सुन के मेरे मन में खिंचाव हुआ सोनीपत। तो मेरे मन में आया कि जब वो सोनीपत बनेगा ना, तो मैं जरूर वहां पे जाऊंगी। तो मैं दीदी से पूछा, दीदी सोनीपत कहाँ होता है? तो कहा कि वो हरियाणा में है, क्योंकि वहां पे हिमाचल में हम 30 साल तक बाहर कहीं भी नहीं आना जाना, भाई लोग बाहर गए स्टडी वगैरह करने पर, हम हिमाचल में ही रहे। तो फिर आज वो समय कि पता नहीं कैसे ड्रामा अनुसार मैं बाबा को कहती थी, बाबा से लड़ाई भी करती थी कि बाबा मुझे ऐसे बड़े चाहिए जो हमें और स्टेप आगे क्या है इस लाइन के, वो मुझे सीखना है और आगे। तो फिर बाबा ने वो संकल्प पूरा किया और ड्रामा अनुसार सोनीपत में आना हुआ। तो सोनीपत में स्टार्टिंग 2014 से हुई, तो वहां पे तब हम दो तीन बहनों ने और कुछ 10-12 भाइयों ने रहना वहां पर शुरू किया। तो अभी 4.5 साल हो गए वहां पे, वहां सेवा कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जी, अभी हम हिमाचल में नहीं है। हाँ जी, धर्मपुर। हाँ जी, मेरा संकल्प था अनु, मैं लौकिक नाम और ये सब लौकिक जात अनुपमा मेहता, मैं कहा ये सब मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं अनु मुझे कहेंगे तो मुझे वो ही कॉन्शियस रहेगी कि मैं वो वाली अनु हूँ, पास्ट वाली, लौकिक वाली। तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी मेरा नाम चेंज कर दो। तो दीदी ने कहा ठीक है, आपको जो इसमें से पसंद है देखो। तो फिर दीदी ने खुद ही कहा कि दिन दो नाम, ठीक है। तो फिर हाँ जी, दीदी का नाम ज्योति था, मेरा नाम बिंदु। एक बार हाँ जी, एक बार जगदीश भाई जी आए थे, बहुत छोटी सी थी मैं, तो उन्होंने नाम पूछा क्या नाम है आपके, ज्योति बिंदु। तो हंसने लग गए। तो ऐसे हमें बेहद खुशी है कि हम सोनीपत में रहते हैं और अमीर चंद भ्राता जी के अंडर में है, वो हमें अच्छी एक सही मार्गदर्शन देते हैं इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इतना बड़ा बेहद का परिवार मिल गया, बेहद के भाई बहने मिल गए, उनके अंग संग रहकर हम बहुत कुछ सीखते हैं और जाकर उसको अप्लाई करते हैं। एक बार हुई थी। पर वो बहुत शांत स्वभाव का था, बचपन से इतना शांत था कि स्कूल में सारे बच्चे शोर करते थे। क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा है वो नंस, तो एकदम शांत होके बैठा रहता था। तो अचानक जब टीचर्स एंटर करती थी स्कूल क्लास में, तो ऋषि भाई शांत, तो टीचर्स देखती थी बच्चे इतना शांत कैसे हैं, कहते देखो, सबको कहते थे वो कि देखो ये इतना शांत कैसे रहता है। तो सारे अभी तक भी टीचर्स उसको याद करती है, वो उनकी जो क्रिश्चियन नंस हैं। तो बीच में जाता था ऋषि भाई, वहां लेक्चर्स दे के आते थे, उन टीचर्स को भी ज्ञान दिया उन्होंने। तो ऐसे बस मैं एक बहन और लौकिक में दो भाई, उससे एक छोटा और भाई है। ऋषि भाई बहुत सेंसिटिव नेज, बहुत ज्यादा, कोई कुछ उसको डांट देते थे रोना शुरू कर देता था, और छोटा सा था। तो उसने कहा कि जब मुझे ज्ञान मिला ना, तो ज्ञान में इतनी स्ट्रांगनेस आ गई कि मेरा वो सेंसिटिव नेचर खत्म हो गया। वर्तमान में यही अभी भ्राता जी भट्टी करके गए थे, तो उन्होंने हमें होमवर्क दिया था कि आपको एक घंटा अपने लिए पर्सनल बैठना है और उसमें अपने बारे में इंटरनली अपना सोचना है और उसमें शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है। ये पर्सनल उन्होंने हमें होमवर्क दिया, अपनी चेकिंग करना, जो कुछ अंदर चल रहा है उसको चेंज करना, ऐसे फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास। तो वो हमें कहते हैं कि आप सूक्ष्म वतन में कितनी देर टिक सकते हैं वो देखो, बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ कि आपकी कितनी देर फीलिंग रहती है, और फिर परम धाम में शिव बाबा के साथ की कितनी देर की फीलिंग रहती है। वो ऐसे ऐसे उन फीलिंग्स को अपने अंदर उतारना, और जो कुछ भी है वो संकल्प के माध्यम से, कोई बात होती है, कुछ भी होता है, तो उसको हल्का लेकर, लाइट लेकर उस बात को खत्म कर देना, मन के ऊपर बहुत देर तक उसका चिंतन नहीं रखना। हाँ, गीत मैंने नहीं, उसने गाए हैं वो तो बहुत है। विशेष माया, लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत होते हैं, आते हैं ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव सेवाओं में, तो माया तो आती है हर बात में। तो उसमें अपने आप को सेफ रखना, सब मतलब कैसे क्या कहें, ये माया तो उसमें अपने आप को बस बाबा की शक्ति से सेफ रह सकते हैं। बाबा के पास चले जाओ, बाबा की याद में खो जाओ, तो इससे पार हो जाते हैं। स्वर्ग का अनुभव तो होता था ना, जो मुझे बचपन में, हाँ उस टाइम पे जो फीलिंग थी ना, तो उसके बाद जब निश्चय हुआ कि हम ही देवी देवता बनने वाले और हमें स्वर्ग में जाना है, तो बहुत लंबे टाइम तक मुझे ऐसी फीलिंग्स होती थी कि मुझे स्वर्ग में शहजादी बनना है बस और मैं शहजादी वाली ड्रेस पहनी हुई है मैंने शहजादी वाली ड्रेस पहनी है, सारा मैंने श्रृंगार किया है और मैं वही हूँ बस, मुझे वही बनना है, हुई मैं वो। मुझे ऐसी फीलिंग्स आती थी, बहुत लंबे टाइम तक ऐसी फीलिंग रही। कर्म सेवा भी करते थे सेंटर पे, ज्ञान भी सुनाते थे, हर चीज, लेकिन बस मैं हूँ और वहां मुझे जाना है। और पता नहीं अविनाश शायद 2000 या 2000 के बाद कभी भी हो सकता है बाबा, उस टाइम पे बहुत सारी आवाजें फैली थी कि बस अविनाश होने वाला है और मुझे तो स्वर्ग में जाकर शहजादी बनना है बस। और माताओं को सेंटर पे मैंने कह दिया कि देखो भाई अब विनाश होने वाला है और एक माता ने अपनी एफडी भी तोड़वा दी, कहती अच्छा विनाश होने वाला है बस, फिर तो ये सब बाहर निकालो, ये सब चला जाएगा इसलिए फिर तो बाबा ने कहा बच्चे विनाश का इंतजार करने की बजाय आप अपना इंतजाम करो। तो फिर अपना इंतजाम करना शुरू कर दिया कि विनाश के सीन में हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है। आप तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, आपके लीडर आप बैठे हैं सामने। कहाँ सेंटर से? हाँ धन सहज तो कहाँ मिलती है पर हाँ एक बहाना मिल गया मुझे उस टाइम पे जब मैं सेंटर से, अब कैसे, क्योंकि इतने सारे कारोबार, इतने सारी सेवाएं, मैंने कहा बाबा ये सब मुझे नहीं चाहिए, नाम मान शान महिमा ये नहीं चाहिए, मैं मुझे इसका इंचार्ज नहीं बनना है, मेरे को एक शांत प्लेस चाहिए और शांति में मुझे तपस्या करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ, अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करने के लिए ब्रह्मा कुमारी बनी, मुझे ये सब बाहरी चीजों का नहीं चाहिए बस, मैं कहा बस शांति का एक स्थान मिल जाए कोई भी, चाहे वो कोई छोटा सा सेंटर एक कुटिया हो, बस मुझे वहां जाके तपस्या करनी है और मेरे मन में कोई थॉट नहीं था, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे नहीं चाहिए। मैं फिर एक बहाना, मुझे शरीर की प्रॉब्लम हुई तो उसमें मुझे फिर वहां से छुट्टी मिली, तो मेरे इस शरीर चट्टी भरा शरीर जिसको बाबा ने अभी मुरली में कहा था 4-5 ऑपरेशन हो गए शरीर के, तो वो बहाना मिला तो ऑपरेशन वगैरह कराए मैंने, एक ऑपरेशन मेरा यहाँ भी हुआ था हरनियों का हॉस्पिटल में, कुछ मैंने वहीं भी कराए, तो अब ऑपरेशन के टाइम तो बहुत ज्यादा कौन सेवा करे, तो फिर लौकिक में ही मैं रुकी, तो वहां लौकिक माता जी ने ही सेवा की। फिर अब आगे नेक्स्ट कहाँ जाए क्या कुछ भी पता नहीं था मुझे, फिर मैं यहाँ आती जाती थी मधुवन में, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर में, जब थोड़ा मैं ठीक हुई तो फिर मुझे भ्राता जी मिले, अमीर चंद भ्राता जी, तो मैंने उनको कहा कि भ्राता जी मैं ऐसे सारा मैंने बताया कि मैं बेहद की सेवा में जान आना चाहती हूँ, तो मैं सोनीपत में आऊँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा अपने को और क्योर कर लो फिर आप आओ। तो जब मुझे लगा कि अभी मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं गई, तो मैं इस संकल्प से नहीं गई थी कि मुझे वहां रहना है, मैं इस संकल्प से गई थी कि पहले मैं जाके देखूंगी वहां का वातावरण कैसा है, ज्ञान योग का वातावरण होगा तो ठीक, अदरवाइज मैं वापस चली जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वो सब अगर कारोबार उस ढंग का हुआ। तो जब मैं गई तो जब मैंने उनकी लाइफ को देखा तो बहुत ऊंचा, मैंने इतने क्लोज, वैसे बचपन से वो हमें जानते थे, बचपन में जब गीता पाठशाला खुली थी उस घर पर भी आए थे हमारे, बट वो इतना नजदीकी बना नहीं था। तो जब मैंने उनको नजदीक से देखा तो मुझे लगा कि नहीं ये लाइफ होनी चाहिए, सेंटर लाइफ में, सेंटर लाइफ में हम कहाँ भाग रहे हैं कुछ पता ही नहीं, बन तो गए ब्रह्मा कुमारी बट हमारा एक एम जो था वो पता नहीं कहाँ पे गोल हो गया, खत्म हो गया। तो फिर जब मैंने उनको देखा कि नहीं ये एक सही दिशा में आगे है, तो वो मुझे बात उनकी जची वहां पर, फिर मैंने संकल्प किया कि अब मुझे यहीं रहना है। तो आज दिन तक हम उनके बिहेव को देखते हैं, इतने लोगों को संभालना और चलाना, इतना पॉजिटिव नेचर, इतने कूल माइंड के इंसान हैं वो, कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे बात, लेकिन हर बात को कूल माइंड से और पॉजिटिविटी से उस बात को वो उठा के सामने वाली आत्मा को भी शांत कर देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी, और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे इंसान कभी नहीं देखे, तो मुझे एक बेहद खुशी है कि मुझे इतने अच्छे बड़े मिले जिसकी मैं बाबा से चाहना करती थी। भगवान को तो ढूंढा नहीं हमने, भगवान तो अपने आप ही आया, उसने पसंद किया और वो ले गया अपने घर में लेकिन बड़ों को ढूंढने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में कि ऐसे बड़े मुझे कहाँ मिलेंगे उसके लिए मैं बाबा से लड़ाई करती थी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए बाहर का। तो अंदर से उस संकल्प आया कि नहीं, हाँ यही ठीक है। और पहले नंबर भ्राता जी, सेकंड नंबर अनीता दीदी, वो भी चंडीगढ़ वैसे रहते 15 सेक्टर में, तो वो भी पहले एक दो साल सोनीपत में ही रहे, तो उनका भी आना जाना रहता, पूरा त्याग तपस्या वैराग भरा उनका भी लाइफ है। तो उनको देख के भी बहुत सारी प्रेरणाएं लाइफ में मिलती है कि हमें भी अपनी लाइफ को ऐसा आगे बढ़ाकर ऐसा बनाना है अपनी लाइफ को, ये संकल्प है। विशेष पुरुषार्थ के लिए तो करना भी पड़ा और करना भी बहुत बाकी है जी, अपने संस्कारों को। मैं बचपन में मुझे क्रोध आता था, ऋषि भाई जितने शांत थे मैं सबसे बड़ी थी, तो वो तो जब वो शोर करते थे तो मैं उनकी पिटाई करती थी, तो कभी कभी छोटा मुझे शोर पसंद नहीं आता था ज्यादा, शांत में रहना अच्छा लगता था, एकांत में रहना पसंद था मुझे इतना नहीं छोटा भाई और भी शरारत करता था तो गुस्सा था, वो नेचर थी मेरी क्रोध की। तो जब सेंटर पे आए तो इस पे पुरुषार्थ किया कि नहीं, मेरा स्वधर्म तो शांत है और मुझे शांत रहना है, इसके ऊपर पुरुषार्थ किया। फिर ऐसा हुआ, एक दिन मैं बैठी थी कि जैसे बाबा ने, एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, ब्लॉटिंग पेपर से जैसे कुछ ऊपर से आया और कुछ मेरे अंदर से चीज बाहर निकल के चली गई, तो ऐसी फील हुई कि वो ब्लॉटिंग पेपर के थ्रू वो चूस कर ऊपर ले गया। परसेंटेज तो है, मैं ये नहीं कहती बट और एक बार का अनुभव है, दीदी ने, छोटे होते थे हम उस टाइम पे, दीदी ने कहा सर्व संबंध के अनुभव, तो बच्चे का अनुभव आया, तो मैंने कहा बच्चे का अनुभव कैसे करें, मैं तो खुद ही बच्ची हूं अभी, तो बच्चे का अनुभव कैसे करेंगे हम बाबा के साथ, तो होता नहीं था अनुभव। मैंने कहा बाबा कराओ ना अनुभव, आप हो तो अब मुझे कराओ बच्चे का अनुभव। तो एक दिन हम क्लासरूम की सफाई कर रहे थे, तो अब इतने भारी भारी वो चीजें, तो मैंने कहा बाबा कैसे उठाएंगे और कैसे इतना ये सब सफाई करेंगे हम, तो मुझे उस टाइम क्या फील हुआ कि एक छोटा सा बच्चा सामने खड़ा है और वो ब्रह्मा बाबा छोटे से रूप में आ गए मेरे सामने और वो मेरे साथ सारा काम करवा रहे हैं। ऐसी मुझे फीलिंग प्रैक्टिकली, वन आज दिन तक मुझे वो सीन नहीं भूलता है, और इतना जैसे पूरा बाबा ने वो सारा काम करवाया अच्छे से, और दिन में इतने थक गए, बहुत जोर की भूख लग गई तो जैसे हम खाना खाने बैठे तो बस कुछ भी बाबा को याद नहीं किया, कुछ भी नहीं याद किया और खाना शुरू कर दिया। जब लास्ट में थोड़ा सा खाना बचा फिर मुझे याद आया, ओहो मैं क्या, वो जो बच्चा था मैं क्या, उसको तो मैंने खिलाया ही नहीं खाना, मैं तो खुद ही खा गई फिर याद आया कि सॉरी बाबा बेटा वो फीलिंग्स। तो कैसे बाबा ने कि बाबा आप अनुभव कराओ, आप साजन हैं, और जो मुरली में बाबा एक शब्द कहते हैं आशिक और माशुक, ये लाइन सुन के मुझे बहुत कशिश होती है, खेच होती है। इस जन्म में तो भक्ति नहीं की, बट पास्ट में बहुत भक्ति की हुई है, बहुत आराधनाएं पूजा इतनी ज्यादा कर रखी है कि वो बाबा ने कहा कि आप 63 जन्म के आशिक हो मुझ माशुक के। तो हाँ, हम थे आशिक उसकी, उसकी आशिकी बहुत की पिछले जन्मों में। अब वो माशुक आके हमें इस जन्म में मिला और उसने हमारी सारी जन्मों की प्यास बुझा दी। तो साजन के रूप में भी, पिता के रूप, हर चीज में उसने अनुभव। बाबा कराओ, आपने मुझे अनुभव कराने, तो सारे संबंध के अनुभव बाबा ने कराए। गीत में एक छोटा सा एक लाइन सुनाऊंगी मैं, बाबा का गीत है साकार टाइम का। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तेरे पत्रों की मीठी याद हमें तड़फाती है दिल को आकर, तड़फाती है दिल को आकर। तूने प्यार दिया साकार में जो मधुबन में आकर, ओ बाबा तेरे कमरे में हम जब जाएं, मधुबन में आकर, ओ बाबा तेरे कमरे में हम जब जाएं, तुझे कोने कोने ढूंढूं मैं, हो तुझे कोने कोने ढूंढूं मैं, तू साकार नजर नहीं आता है, साकार नजर नहीं आता है। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। शांति। साकार बाबा की अनुभूति यहाँ होती है।